आगे है हज़रत इब्राहिम का किस्सा। तो पिछले किस्से क्या थे? प्री इब्राहिमिक कबलस इब्राहिम किस्से। पीछे भी ये तरतीब थी ना सूरत अल अराफ में, यहाँ भी। अब हज़रत इब्राहिम और लूत दोनों हम असर थे, सेम टाइम मेरा, जैसे अब आज हम कहें कि 2023 के दौर के लोग। तो उनका किस्सा है, आयत 69 से 83 है। अल्लाह का हुक्म पूरा हो के रहना है, ये है इसका थीम। वलकद जात रसुलुना इब्राहिम बिल बुशरा, और हमारे भेजे हुए पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर पहुँचे और सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब में सलाम दिया और बग़ैर किसी ताखीर के बछड़े का भुना हुआ गोश्त ले आए। अब जो देखा कि इनके तो हाथ भी इसकी तरफ नहीं पहुंच रहे हैं, तो इनसे अजनबियत महसूस करके दिल ही दिल में इनसे खौफ करने लगे। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे हुए आए हैं। उनकी बीवी खड़ी हुई थी, वो हंस पड़ी। तो हमने इसे इसहाक की और इसहाक के पीछे याकूब की खुशखबरी दी। कहने लगी, हाय मेरी कमबख्ती, यानी अब देखिए कि नबी की बीवी है लेकिन थी तो औरत ही ना, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे हाँ औलाद कैसे हो सकती है, मैं खुद तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे खावन भी बड़ी उम्र के हैं, ये यकीनन बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तो अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रही है, तुम पर है घर के लोगों अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें नाजिल हों, बेशक अल्लाह ताला हमदो सना के लायक और बड़ी शान वाला है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खौफ जाता रहा और उन्हें बिशारत भी पहुँच चुकी, तो हमसे कौम लूत के बारे में कहने सुनने लगे। यकीनन इब्राहिम बहुत तहम्मुल वाले, नरम दिल और अल्लाह की जानिब झुकने वाले थे। ऐ इब्राहिम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, यानी कि कौम लूत पे क्या हो रहा है, कि आपके रब का हुक्म आ पहुंचा और इन पर ना टाले जाने वाला अजाब जरूर आने वाला है। क्या पता चला कि अब जो होना है वो होगा। जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो इनकी वजह से बहुत गमगीन हुए और दिल ही दिल में कुड़ने लगे और कहने लगे, आज का दिन तो बड़ी मुसीबत का दिन है। और उसकी कौम दौड़ती हुई उनके पास आ पहुंची, इससे पहले जो बदकारियों में मुबतला थी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम के लोगों, ये हैं मेरी बेटियाँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही पाकीज़ा हैं, अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा न करो, क्या तुम में से कोई एक भी भला आदमी नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि तू बखूबी जानता है कि हमें तो तेरी बेटियों पर कोई हक नहीं, यानी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन, और तू हमारी असली चाहत से खूब वाकिफ है, यानी हमें तो मर्द चाहिए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मुझ में तुमसे मुकाबला करने की कुव्वत होती या मैं किसी ज़बरदस्त का आसरा पकड़ता। फरिश्तों ने कहा, है लूत, हम तेरे परवरदिगार के भेजे हुए हैं, नामुमकिन है कि ये तुझ तक पहुँच जाए, बस तू अपने घर वालों को लेकर कुछ रात रहे निकल खड़ा हो, तुम में से किसी को मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए बजुस यानी सिवाय तेरी बीवी के, इसलिए कि इसे भी वही पहुंचने वाला है जो इन सब को पहुंचेगा। यकीनन इनके वादे का वक्त सुबह का है, क्या सुबह बिल्कुल भी करीब नहीं, अलैहिस्सुबह भी करीब? फिर जब मेरा हुक्म आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती को जेरो जबर कर दिया, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया, और इन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे, यानी असाइंड थे, अपॉइंटेड थे, और वो इन जालिमों से कुछ भी दूर ना थे। तो ये तवील किस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी खूबियां सिर्फ इस एक हिस्से में आपने देखी। आयत 75 को अगर देखें तो बुर्दबार, हलीम, रुजू करने वाले, अव्वाह, आहें भरने वाले, नरम दिल यानी मुनीब थे। और फिर इसी तरह से आप देखते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जहाँ लूत अलैहिस्सलाम का तस्करा आपको ज़रा सा अजीब लगा होगा, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 100 साल की हो चुकी थी। एक रोज़ बहुत खूबसूरत नौजवान शक्ल में उनके घर में कुछ लोग दाखिल हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे, फौरन खाने का इहतमाम करने लगे, लेकिन वो लोग असल में फरिश्ते थे, इंसान नहीं थे और फरिश्ते खाते नहीं। उन फरिश्तों के आने के दो मकसद थे, नंबर एक हज़रत इब्राहिम को औलाद की बिशारत देना। देखिए 900 साल की उम्र में भी अल्लाह आपको औलाद दे सकता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। और दूसरी बात, कौम लूत जो इनके हम असर थे, इनके ये चचा थे तो वो भतीजे थे, तो उनकी कौम को हलाक करने के लिए आए थे, जो इनकार और सरकशी की आखिरी हद, यानी हम जिन्स परस्ती का शिकार थे, होमोस थे वो, गेस थे वो, और आज के दौर में वो लेस्बियंस तो नहीं थे कह लें, लेकिन उनके मर्दों में औरतों के साथ जो मामला था वो नहीं था, क्या पता चला कि नबी के दौर में भी कौमें भटकती हैं। साहबे करम कहा करते थे कि अगर कुरान में कौम लूत का किस्सा ना होता तो हम कभी ना मानते कि ये काम पॉसिबल भी है। इंतहाई गैर फितरी चीज़। अब देखिए कि अल्लाह ने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा रखे हैं ना, मुंह में चम्मच जाता है, आपका चम्मच कान में जाए कैसा लगेगा? कोई पानी खोल के आंखों में डाले, बस यही जवाब है। अल्लाह ने जिस्म के जिस ऑर्गन को जिस मकसद के लिए पैदा किया उसके पीछे काम है। हर उसकी तरह अल्लाह ने प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रोडक्शन के लिए पैदा किया है, नस्लें पैदा हों, आगे से आगे चीज़ें चलें। लेकिन जब आज के दौर को हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि मत ही मारी गई, उल्टे कपड़े उल्टे जूते पहनाकर हमारी नस्लों को न जाने कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है। और इस वक्त तो पूरी दुनिया इन्हीं चंद लफ्ज़ों का मजमुआ बन चुकी कि जिस पे बात करने की इजाज़त नहीं, जिस पे पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। और एक तरफ अब देखिए इन दोनों वाक़यात का इकट्ठा आना, मैं अक्सर सोचती हूँ कि बार बार कुरान से जब बंदा गुजरता है तो अल्लाह कैसे हिकमतें खोलता है। जब पीछे जो एक एक नबी का किस्सा आ रहा है तो एक तरफ अल्लाह किस्सा ले आता इब्राहिम का, फिर एक और रुकू शुरू हो जाता तो हजरत लूत का आता। ऐसा क्यों नहीं है? सोचिए, आप अपनी थिंकिंग पावर बढ़ाएं कुरान को सुनते हुए, खासतौर पर जो पहले कई बार माशाल्लाह पढ़ सुन चुके हैं। एक तरफ 100 साल बूढ़ा बूढ़ी और अल्लाह औलाद की खुशखबरियाँ दे रहा है, और दूसरी तरफ वो करतूत के जो जवानों से वो काम जिस पे वो पड़ गए जिससे औलाद का रास्ता ही बंद हो रहा है, अल्लाह दोनों को एक रुकू में ला रहा है। सोचते हैं ऐसे कभी आप कि कैसे तुम नस्लों को ख़त्म कर रहे हो? आज वेस्ट पहले ही परेशान है, उनके लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। जितनी सहूलतें गवर्नमेंट देती है, हम मैं जिन मुल्कों को जानती हूँ, आपके हिसाब से कई कई लाख रुपया वो एक बच्चे के पैदा होने पे सिर्फ इस शौक में देते हैं, जो बच्चों के कपड़े खरीद लो, फिर भी उनके लोग नहीं बच्चे पैदा करते। और हमारे मुसलमानों को फायदे हो जाते हैं, लाख लाख करोड़ कहते हैं दे देते हैं बच्चे की शॉपिंग को। 1 साल की छुट्टी मिलती है, मामा लीव, मामा फेरिए, बाबा फाई फेरिए, 3 माँ बाप को छुट्टी देते हैं, फिर भी नहीं वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये मुसीबत जो शुरू हो गई है, तो फिर जानवर ही पालेंगे ना, घोड़े गधे छोड़िए कुत्ते बिल्लियाँ पाल के उनको बच्चे बनाते हैं। किसी वॉक के दौरान आप देख लीजिए, शायद ही किसी के साथ उसका बच्चा हो। कपल भी बहुत थोड़े हैं, वो छोड़ जाते हैं इस उम्र में, और वो अपने घर में चलती फिरती हिलती जुलती बिल्लियाँ और कुत्ते रखते हैं, क्योंकि इंसान तो ख़त्म हो गए। तो बिल्कुल याद रखिए, फितरत के खिलाफ इंसान जब चलेगा तो ऐसे ही होगा। और अल्लाह सुबहान तआला ने हज़रत इब्राहिम को अपने काम के लिए चुना था ना, उस माशरे का सबसे खूबसूरत घराना था इब्राहिम और उनकी बीवी, औलाद की नेमत से महरूम था। अल्लाह चाहे तो बाद में दे दें। दीन हक की खिदमत के लिए वो खड़े हुए, अल्लाह ने उनको पीछे से नस्लों की नस्लें अता कर दी। तो क्या पता चला कि अपने दौर के अंबिया को बड़े खुशबख्त नहीं दिख रहे होते? हम होते उस दौर में कहते, हाय इब्राहिम बेचारे बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, औलाद ही नहीं हुई, ये है वो है। नहीं, इसीलिए आप देखिए कि सहाबा का मुकाम क्यों है, कि नबी के साथ उस वक्त चमक दमक नहीं थी लेकिन वो साथ चल पड़े। बाद में दूसरे लोग जाहिरी चीज़ों को देखकर शामिल होते, इसलिए पक्के नहीं होते, वो बस ऊपर से लगे हुए उस सितारे की तरह जो एक धुलाई से उतर जाना है। साहबा वीवन थे, बुनतर में थे, बुनाई में बुने हुए थे नबी के साथ, इसलिए साथ नहीं छोड़ा। और वो टीम जो आपके स्ट्रक्चर के दौरान बनती है ना, और सिंपल सी बात है, पहला बैच फर्स्ट बैच, कुर्बानियाँ भी वही देते, हिजरतें भी वही करते, घर भी वही देते, चीज़ें भी वही लाते, खाने भी वही पकाते, वही उठ के कुर्सियाँ उठाते, वही सफाइयाँ करते, वो हर वक्त वही बाद में तैयार श्यार होकर रिसेप्शनों पे भी बैठ जाते हैं। ये वीवन होते हैं, ये नहीं जाते, और अल्लाह ना करे ये जाए। इनमें से कोई जाए तो उसको मैं कहती हूँ उसकी चारों टांगे पकड़ने जाने ना दें, क्या आप इधर डमी बन के बैठे रहें, कुछ ना करें लेकिन छोड़े ना, क्योंकि ढांचा गिर जाता है। अगर अल्लाह ने आपको किसी भी दावत किसी तहरीक की बुनियाद में डाला ना, तो अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह मुझे इसमें रखना, अल्लाह मस्तखदिमना वला तस्तबदिलना। अल्लाह ताला कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन बातों से आपको मुझे इतना कुछ सुना रहा है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्या ये बात दुरुस्त नहीं हो रही? अगली बात देखिए कि हज़रत लूत के लिए इब्राहिम की दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह चाहे तो करे कबूल, ना करे तो ना करे, और कौम पे पकड़ आनी थी तो आनी थी। हज़रत नूह ने अपने बेटे के लिए दुआ की, कबूल नहीं हुई। आप मैं कैसे कह सकते हैं कि फ़लाँ की दुआ ज़रूर लगती है और उसकी लगती है? कौम यूनुस की मिसाल दे लीजिए कि कौम की दुआ कबूल हो गई या अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। तो असल बात आपके अंदर, अम्बिया कराम अपनी कौमों के लिए दुआ करते थे लेकिन कौमें अपने लिए नहीं करती थी, इसलिए नहीं हिदायत मिली। कॉमन यूनुस ने अपने लिए दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। तो एक को दूसरे से दुआ करानी चाहिए, करनी भी चाहिए, अम्बिया ने भी की, खुद भी की, लेकिन अपने लिए दुआ करना भूलना नहीं चाहिए। किसी की दुआ आपको सिर्फ उस वक्त लगेगी जब आप खुद भी अपने लिए दुआएं करेंगे, आप खुद भी अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे। फिर आप देखिए कि जो फरिश्ते हैं वो इंसानी रूप में आए, कौम की तो राल टपक गई, खुल्लम खुल्ला बदकारी थी और मेहमानों की इज्जत खराब होने का डर था। कितनी जुरत मिल गई, कहने लगे हमें नहीं औरतों से कोई कशिश। आज भी आप देखिएगा कि इस फेल के करने वाले पे उसके अंदर सबसे ज्यादा बेगैरती आ जाती है। मादरजात नेकिड लड़की मुसलमान थी, उसके जिस्म पे सिर्फ एक टॉप ऐसी वो पट्टी सी नहीं बैनर सा जो लगा देते हैं कुछ लिखते हैं, उसको सिंबल बना के शहर का सेंटर जिसको आप सिटी सेंटर कहते हैं ना, उसमें पेश किया गया कि उसने आके कहा था कि आई एम मुस्लिम एंड आई एम गे। ये किसी मुल्क में हुआ था, नाम मैं नहीं बताती। और ऊपर जो हाफ हेलीकॉप्टर पे उसकी हिफाजत कर रहे थे क्योंकि उसने कहा था कि मुस्लिम्स विल किल मी, और उसको पूरे शहर में ऐसे दिखाया कि इससे नेक पाक औरत कोई नहीं है, देखो देखो मुस्लिम भी ऐसे होता है। अल्लाह की पनाह। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों से, इन फितनों से अपनी नस्लों को बचाइए, और उस दौर में देखिए और आज देखिए, अगर आज कोई नबी होता तो ख़त्म हो चुकी होती दुनिया, गेहूं के साथ घुन भी पिस चुका होता। लेकिन अल्लाह ताला ने इन कौमों के किस्से बताकर हम सबको बता दिया कि डोंट लूज योर होप। अल्लाह ताला हर जगह से कुछ ना कुछ देते हैं। हज़रत लूत क़यामत के दिन उन अम्बिया में से खड़े होंगे जिनके साथ एक मर्द भी नहीं है, सिर्फ इनकी दो बेटियाँ इन पर ईमान लाई थी। बीवी तक वो होमो नहीं थी, लेकिन उसकी हमदर्दियाँ अपनी बिरादरी से थी। छत पे एक झंडा खड़ा कर देती थी, कोई ऐसे हालात होते तो वो कौम को बताती आ जाओ इधर लड़के आए हुए हैं। अल्लाह की बना। तो याद रखिए कि नबी की बीवी होना भी उसको फ़ायदा ना दिया। तो आपका मेरा अपने बारे में क्या ख्याल है, अल्लाह की रज़ा वाले नुक्ते नोट कीजिए। हलीमी लानी है अपने अंदर, नरम दिली लानी है, अल्लाह से डर कर रहना है और अल्लाह की तरफ रुजू करना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे दे। अगला किस्सा है कौम शोएब का, 84 से 95 और रुकू नंबर 8 है। व इला मद जना खाखुम शोएबा, टॉपिक है ज़मीन में इसलाह का काम करना है। और हमने मदीन वालों की तरफ इनके भाई शोएब को भेजा, उसने कहा है मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और तुम नाप तोल में भी कमी ना करो, और मैं तो तुम्हें खुश आसूदा हाल देख रहा हूँ, यानी बड़े खाते पीते हो, वेल ऑफ हो, माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा है, और मुझे तुम पर घेरने वाले दिन के अजाब का खौफ है। ऐ मेरी कौम नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा करो और लोगों को इनकी चीज़ें कम ना दो और ज़मीन में फसाद और ख़राबी ना मचाओ, और अल्लाह का हलाल किया हुआ जो बच रहे हैं तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, यानी सेविंग्स। अगर तुम ईमान वाले हो मैं तुम पर कुछ निगहबान और दारोगा तो नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि शुएब क्या तेरी सलात तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है। ये नोट कर लीजिएगा, असलातु का तामरुक, नमाज का ताना हर दौर में मिलता है। क्या हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादाओं के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें इसका करना भी छोड़ दें। तो तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी है, कहा है मेरी कौम देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील लिए हुए हूँ और इसने मुझे अपने पास से बेहतरीन रोजी दे रखी है, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं कि तुम्हारे खिलाफ करके खुद इस चीज़ की तरफ झुक जाऊँ जिससे तुम्हें रोक रहा हूँ। मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इसलाह करने का ही है, मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, इसी पर मेरा भरोसा है और इसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। ये है कॉन्फिडेंस, और सच्चे ईमान के बाद ये एतमाद ज़रूर आता है। और ऐ मेरी कौम के लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मेरी मुखालफत इन अजाबों का मुस्तहिक बना दे जो कौम नूह और कौम हूद और कौम सालेह को पहुँचे हैं, और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर भी नहीं। यानी वही देखिए तरतीब है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो और इसकी तरफ तवज्जो करो, यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला और बहुत मोहब्बत वाला है। उन्होंने कहा है शुएब तेरी अक्सर बातें तुम्हारी समझ में ही नहीं आती, यानी तेरे साथ हमारी वेवलेंथ ही नहीं मिलती, तेरा तो पता नहीं क्या मेयार है, हमें तो कुछ नहीं समझ आता। क्या नहीं थी आती, जुबान नहीं समझ आती थी, आती थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम था नहीं, ये प्रॉब्लम था, माइंड सेट नहीं मिलता था। और आज भी जिन लोगों को जो नहीं समझना होता ना वो नहीं समझते, हर आने वाले से वही सवाल पूछेंगे, कोई एक आ जाए और हमारी बात कह दे जो हम चाहते हैं ताकि हम उसका नाम लेके वो काम करने लगे। तो जब दिल ना चाहे तो बात समझ भी कैसे आए। हम तुझे अपने अंदर बहुत कमज़ोर आदमी पाते हैं, अगर तेरे कबीले का ख्याल ना होता तो हम तुझे संसार कर देते। आज भी यही बात है कि कबीले के लिहाज पे तो चुप है, वैसे अल्लाह के दम पे नहीं। जवाब सुनिए क्या कहते हैं, और हम तुझे कोई हैसियत वाली हस्ती भी नहीं गिनते। उन्होंने जवाब दिया है, मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे नज़दीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज़्यादा सी इज्जत हैं? तुमने इसे पसे पुछ डाल दिया है। यकीनन मेरा रब जो कुछ तुम कर रहे हो सबको घेरे हुए है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अब तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। तुम्हें इन करीब मालूम हो जाएगा कि किसके पास वो अजाब आता है जो इसे रुसवा कर दे, और कौन है जो झूठा है। तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मंतज़र हूँ। जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुँचा तो हमने शुएब को और इनके साथ तमाम मोमिनों को अपनी खास रहमत से निजात बख्शी, और जालिमों को सख्त चिंघाड़ के अजाब ने धर दबोचा, जिससे वो अपने घरों में उंधे पड़े हुए रह गए, गोया कि वो इन्हीं घरों में कभी बसे ही ना थे। आगा रहो, मदियन के लिए भी वैसी ही दूरी हो जैसी दूरी समूत के लिए हुई। और ये जो लफ्ज़ है ना, बहुत बहुत कहते हैं लान दूरी, लानत भी असल में रहमत से दूरी होती है। तब देखिए कि 85-86 में हजरत शुएब को कौम की नसीहतें क्या थी कि नाप तोल में कमी ना करो, लोगों को चीज़ें घटा के ना दो, ज़मीन में फसाद ना करो। और इस बारे में एक हदीस भी है, इब्ने माजा की रिवायत 4019, अब्दुल्ला बिन उमर इसके रावी हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए मुहाजिरों की जमात, पांच चीज़ें ऐसी हैं कि जब तुम इनमें मुबतला हो गए तो इनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि वो बुरी चीज़ें तुम तक पहुँचे, यानी कि ना पहुँचे मुराद है। कौन सी चीज़ें हैं नोट कर लीजिए। जब भी किसी कौम में बेहयाई और बदकारी एलानिया फैलने लगती है तो इनमें ताउन और इस जैसी बीमारियां फैल जाती हैं जो इनके गुजरे हुए बुजुर्गों में नहीं होती। जब भी वो नाप तोल में कमी करते हैं तो इनको कहत साली और रोजगार की तंगी और बादशाह के जुल्म के जरिए से सजा दी जाती है। और तीसरा जुर्म, जब अपने मालों की ज़कात देना बंद कर देते हैं तो इनसे आसमान की बारिश रोक ली जाती है। अगर जानवर ना हो तो इन्हें कभी बारिश ना मिले, यानी इन कमजोर जानवरों के लिए अल्लाह बारिश देता है जो फिर इंसान भी फायदा उठा लेते हैं। और अगला काम, जब वो अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ते हैं तो इन पर दूसरी कौमों में से दुश्मन मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो इनसे वो कुछ छीन लेते हैं जो इनके हाथ में होता है। जब भी इनके इमाम यानी सरदार और लीडर अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते और जो अल्लाह ने उतारा है उसे इख्तियार नहीं करते, तो अल्लाह ताला आपस में इनके लड़ाई डाल देता है। क्या आज हमारे मुल्कों का ये हाल नहीं? क्या आप किसी और को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो यहाँ हजरत शुएब का जो तस्करा है, तो याद रखिए कि मदियन का इलाका हिजाज और शाम के बीच में था। कारोबारी लोग थे, खाते पीते, खुद को मोमिन कहते थे, क्योंकि बार बार लफ्ज़ नहीं कह रहे हैं तो मोमिन। आप कह सकते हैं कि अपने ज़माने की मुसलमान कौम थी, हजरत शुएब से पहले आने वाले नबी की उम्मत थी, लेकिन एक अरसा गुजरने के बाद नस्लों में बिगाड़ आ गया। हज़रत शुएब ने उनको उनके ईमान के तकाजे याद दिलाए और ऐसी डंडियां मारने से रोका कि तुम क्या अच्छे भले तो हो, नफ़ा भी ले रहे हो, प्रॉफिटेबल है, सब कुछ है, लेकिन तुम फिर भी डंडियां मारते हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनमें पैसे की ज़्यादा हिरस होती है अमूमी तौर पर, इल्ला माशाल्लाह। हज़रत उस्मान में नहीं थी, अब्दुल रहमान बिन औफ में नहीं थी, लेकिन अमूमी तौर पे जिसके ज्यादा होते ना, कहते और खींच लो। और याद रखे, जहाँ सूद होगा, इंटरेस्ट की बेस यही है ना कि गरीब आपसे कर्ज लेने आया और आप उसका खून निचोड़ के उसमें से परसेंटेज ले रहे हैं कि 1%, 2, 10% आप मुझे दीजिए। तो ये सारा कुछ आपको बता रहा है कि ऐसे लोग हर दौर में मौजूद रहे जो माली तौर पर कमी पेशी करते थे। और ये जो नमाज का ताना मिला ना, तो असल में नमाज से मुराद दीन है। तुम्हारा दीन तुमको ऐसा हुक्म देता है, क्योंकि दीन और नमाज एक है। ये आयत इस बात की दलील है उलमा के नज़दीक कि देखो नमाज दीन है। एक और भी है ना दूसरे पारे में तहवील क़िबला में, कि अल्लाह तुम्हारी नमाजों को ज़ाया नहीं करेगा। उसकी जगह क्या आया कि अल्लाह तुम्हारे दीन को ज़ाया नहीं करेगा। तो बहरहाल दीन नमाज के साथ है और नमाज दीन के साथ है। तो ऐसी सारी बातों से आपको मुझे भी अपने लिए यही अमल लेना है कि जो अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी हो जाए, और ऐसी छोटी सी चीज़ दुनिया में लेकर अल्लाह की तरफ से आई हुई दलील को नहीं ठुकराइए। और आप देखिए कि एक बंदा दुनिया में रोटी के लिए जीता है, हालांकि अल्लाह का नबी जिस चीज़ की दावत देता है और वो मोमिन, वो दलील के लिए जीता है। तो हक के साथ रहते हुए अगर इन सारी चीज़ों को लेके चलेंगे तो आज भी बहुत बरकत है। ये आज जो आपको बेबरकती, महंगाई और गुर्बत दिख रही है ना, ये दूसरी तरफ है। फिर अगर आपने थोड़ा सा भी गौर किया हो ना, तो ये जो आखिरी हिस्सा था ना, 91, 92, 93 तक, इतना तसलसल और इतना रिदम है कि आपको अल्लाह के नबी की बात याद आ जानी चाहिए कि खतीबुल अंबिया थे हज़रत शुएब। जब बात करते थे एलोगेंट, फ्रीक्वेंसी ऐसी प्यारी थी, कभी उतार चढ़ाओ, बात में असर बहुत था। हज़रत शुएब के लिए लिख लें, खतीबुल अंबिया थे, यानी खिताब करते तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसी खूबसूरत बातें भी काम ना आई तो क्या किसी ने कहा, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मरते नादा पे कलाम में दिल फरेब बेअसर। जिनको नहीं समझना होता ना, उनको मीठी जुबान भी नहीं समझ आती और उनको कड़वी जुबान भी समझ नहीं आती। और ऐसे लोग जो माली मामलात में होते हैं ना, वो बहुत कम समझते हैं, क्योंकि माल की कुर्बानी देकर हक को मानना ये बहुत कम लोगों के लिए होता है। फिर धमकियाँ, हम तुझे मार देंगे, तुम्हारी बिरादरी से है, ये है वो है, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के दिल में अल्लाह ताला की कदर नहीं थी, तभी तो बिरादरी की बात की। और इसी से फिर आप और मैं अपने लिए अमल की बात लेंगे कि अल्लाह ताला के रस्तों में जो भी लोग निकलें उनको हकीर नहीं जानना। फिर इसके बाद अपने लिए इसमें से अल्लाह की रजा वाले नुकात नोट कर लेते हैं। रजा इलाही पाने के नुक्ते, अल्लाह के अजाब से डरना है, नाप तोल में कमी नहीं करनी और दूसरों को भी रोकना है, अल्लाह की इबादत की दावत देनी है, कौल व फेल का तजाद नहीं रखना, दूसरों के खिलाफ वो काम करने से रुकना है जिससे खुद दूसरों को रोकते हैं, और ज़मीन में फसाद नहीं डालना, इस्लाह का इरादा करना है, अल्लाह पे भरोसा करना है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है, रसूलों की मुखालफत से डरना है, रब की तरफ पलटने की दावत देनी है। अब इसके बाद रुकू नंबर 9 में मुख्तसरन हज़रत मूसा का किस्सा है, आयत 96 से बनो 9। अल्लाह ताला हर एक का हिस्सा देता है, ये टॉपिक है। वलकद अरसलना मूसा भी आयातिना, और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयात और रोशन दलीलों के साथ भेजा था फिरौन और इसके सरदारों की तरफ, फिर भी इन लोगों ने फिरौन के अहकाम की पैरवी की और फिरौन का कोई हुक्म दुरुस्त था ही नहीं। अल्लाह ऐसे लीडरों से बचाए जो गलत फैसले हमारे ऊपर इम्पोज कर दें। और अगर अल्लाह ने आपको कहीं ज़िम्मेदार बनाया ना, तो अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह मैं अपनी इस हैसियत को पहचानते हुए दुरुस्त फैसले करूं। वो क़यामत के दिन अपनी कौम का पेश रो होकर इन सब को दोजख में जा खड़ा करेगा। वो बहुत बुरा घाट है जिस पर ला खड़े किए जाएंगे। इन पर इस दुनिया में भी लाना चिपका दी गई और क़यामत के दिन भी बुरा इनाम है जो दिया गया। बस्तियों की ये बास खबरें जिन्हें हम आपके सामने बयान फरमा रहे हैं, इनमें से बास तो मौजूद हैं और बास की फसलें कट चुकी हैं। हमने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि खुद इन्होंने ही अपने ऊपर जुल्म किया, और इन्हें इनके माबूदों ने कोई फायदा न पहुंचाया जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे, जब तक कि तेरे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा, बल्कि वो इनका नुकसान खुद ही बढ़ा दिया। अब देखिए, पिछली कौमों को तो छोड़िए, 2 साल पीछे जाइए, कोरोना आया था, किसी बुजुर्ग ने, किसी कब्र वाले ने उसको ख़त्म किया, वो दरगाहें भी खाली हो गई थी। उन दिनों में तो उधर रश होना चाहिए था। तो असल बात यह कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, वही टाले तो तकलीफ टलती है, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर वही टालता है। इसीलिए तेरे परवरदिगार की पकड़ का यही तरीका है कि जब वो बस्तियों के रहने वाले जालिमों को पकड़ता है, बेशक इसकी पकड़ दुख देने वाली और नहायत सख्त है। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशान इबरत है जो कियामत के अजाब से डरते हैं। वो दिन जिसमें सब लोग जमा किए जाएंगे, और वो दिन है जिसमें सब हासिर किए जाएंगे। इसे हम जो मुलतवी करते हैं वो सिर्फ एक मुद्दते मुअय्यन तक है। जिस दिन वो आ जाएगी, मजाल ना होगी कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई बात भी कर ले, बस इनमें कोई बदबख्त होगा और कोई नेक बख्त होगा। लेकिन जो बदबख्त हुए वो जहन्नुम में होंगे, वहाँ चीखेंगे चिल्लाएंगे, वो वहीं हमेशा रहने वाले हैं जब तक कि आसमान और ज़मीन बरकरार रहें, सिवाय इस वक्त के जो तुम्हारा रब चाहे। यकीनन तेरा रब जो कुछ चाहे वो कर गुजरता है। अल्लाह हमें ऐसे बुरे अंजाम से बचाए और ऐसे बुरे अंजाम की तरफ बढ़ने वालों की तरफ हमें लेकर जाए, और हम उनकी हिदायत का जरिया बन जाए। लेकिन जो नेक बख्त किए गए वो जन्नत में होंगे, जहाँ हमेशा रहेंगे जब तक जमीन और आसमान बाकी रहे। मगर जो तेरा परवरदिगार चाहे ये बेइंतहा बख्शिश है। इसलिए आप इन चीज़ों से शक व शुबे में न रहें जिन्हें ये लोग पूछ रहे हैं। इनकी पूजा तो इसी तरह है जिस तरह इनके बाप दादाओं की इससे पहले थी। हम इन सब को इनका पूरा पूरा हिस्सा बगैर किसी कमी के देने वाले हैं। अल्लाह अकबर। तो क्या पता चला कि अम्बिया के ये सारे किस्से सुना के नबी सल्लम को बता दिया कि आप इन लोगों को बता दीजिए कि कल का दौर हो या आज का दौर हो, हक की मदद करना अल्लाह के जिम्मे है। मौजज़ों से बात नहीं बनती, मादी बड़ाई के दावेदार बिलाखिर हक के मुकाबले में नहीं खड़े हो सकते। और अल्लाह के नबी को जो आखिरी रुकू में बता दिया, तो यहाँ थी वो बात जिसने नबी के बालों को सफ़ेद करा दिया, बड़ा पा गया। और वो क्या थी कि इतने अजाब इन बस्तियों पे आ रहे हैं, कहीं मेरी कौम यानी कौम कुरैश भी तबाह ना हो जाए। क्योंकि जब कौमें सरकशी और जुल्म करती हैं ना, तो वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बचती। और ख़ास तौर पे फिर अल्लाह ताला के नबी जैसा शख्स जो इतनी मोहब्बत करने वाला है, कैसे लोगों ने उनको झुठलाया। ये छोटी छोटी क़यामतें थी जो हमने इन अम्बिया कराम के किस्सों में पढ़ी, और उसके बाद तो कुछ ढील मिली, लेकिन जब असल क़यामत आएगी तो उसके बाद बिल्कुल भी ढील नहीं होगी। आपको स्टबन कौमें नहीं लग रही, शक करने वाली हैं, मुँहज़ोरी करने वाली, मुँह मारी करने वाली कौमें। तो क्या पता चला कि अल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ता कि जो अम्बिया कराम या उनके बाद उनकी दावत के रास्ते में रुकावट बने, और जिसके पास जितनी नेमत है उतना वो परेशान हो। ये बात समझ नहीं आती आज उम्मत मुस्लिमा के पास कितनी नेमतें हैं और हम उतनी परेशान हैं। और ये 112 आयत है ना, इसको हाईलाइट करें। उलमा कहते हैं ये है वो आयत, फस्तकीम कमा उमिरता व ममा का वला ततगौ इन्नहू बिमा तअमलून बसीर। यानी आप अपना काम करते रहिए और इनको छोड़ दीजिए। एक जुमला लिखिए, जम होगा इसका, दावते हक का इब्तदाई इस्तकबाल नज़रअंदाज करने की सूरत में होता है। शुरू में लोग हक की दावत को ओवरलुक करते हैं, इग्नोर करते हैं, छोड़ो दिमाग ख़राब है, मत मारी गई है, सर फिर गया। दावते हक का इब्तदाई इस्तकबाल वेलकम इग्नोर करने से होता है, इसके बाद मुखालफत शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जब मुखालफत अपने आखिरी नुक्ते पे पहुँचती है ना, तो ये दावत देने वाले के लिए बड़ा नाजुक वक्त होता है। इस वक्त फिर इनके दरमियान इख्तलाफात शुरू होते हैं, कुछ झुंझला जाते हैं। वो कहते हैं इनके मुखालिफिन से लड़ जाएं, कोई कहते हैं इनसे कुव्वत से लड़ें, लेकिन दूसरे कहते हैं नहीं, हम अपनी दावत को तेज़ करते जाएं और इनको दावत के ज़रिए से ही आगे लेके चलेंगे। अल्लाह मुझे आपको इन्हीं लोगों में शामिल करे। तो ये अपने अपने दौर की मुस्लिम कौमें थी जो तबाह व बर्बाद कर दी गईं। अल्लाह का सारा गुस्सा काफिर पे नहीं, मुसलमान पे आता था, आज भी आता होगा, लेकिन हमारे पास उसकी कोई दलील नहीं है, जिन्होंने अपने दौर के अम्बिया कराम की दावत को पीछे डालकर वक्त और हालात को सामने रखा। आपके मेरे लिए रज़ा इलाही पाने के नुक्ते, वक्त के फिरौन के हुक्म की पैरवी नहीं करनी, खुद पर जुल्म नहीं करना, अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को माबूद नहीं बनाना और उनको मदद के लिए नहीं पुकारना, साहिब इक्तदार लोगों की बगैर सोचे पैरवी नहीं करनी, और अल्लाह की नाराज़गी से बचते हुए उसकी बख्शिश का यकीन रखना है। इसके बाद आयत नंबर 110 से 123, 123 रुकू नंबर 10, साबित कदम रहना। वलक़दातैना मूसल किताब फख़्तलिफ़ा फ़ीह। यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, फिर इसमें इख्तलाफ किया गया। अगर पहले ही आपके रब की बात सादिर ना हो गई होती तो यकीनन इनका फैसला कर दिया जाता। इन्हें तो इसमें सख्त शुबा है, यकीनन इनमें से हर एक जब इसके रूबरू जाएगा तो आपका रब इसके आमाल का पूरा पूरा बदला देगा। बेशक वो जो कर रहे हैं उससे वो बाखबर है। बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया, और वो लोग भी जो आपके साथ तौबा कर चुके हैं, खबरदार तुम हद से न बढ़ना, अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल को देखने वाला है। देखो जालिमों की तरफ हरगिज़ नहीं झुकना, वरना तुम्हें भी दोजख की आग लग जाएगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार न खड़ा हो सकेगा और न तुम मदद किए जाओगे। आखिर में नमाज का तज़किरा, दिन के दोनों सिरों में नमाज बरपा रख। और रात की कई सातों में भी यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। आप सब्र करते रहिए, यकीनन अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों में रखे। बस क्यों ना आपसे पहले के लोगों में से ऐसे अहले खैर लोग हुए जो ज़मीन में फसाद फैलाने से रोकते, सिवाय इन चंद के जिन्हें हमने इनमें से निजात दी थी। जालिम लोग तो इस चीज़ के पीछे पड़ गए जिसमें इनको आसूदगी दी गई थी और वो गुनाहगार थे। आपका रब ऐसा नहीं कि किसी बस्ती को जुल्म से हलाक कर दे और वहाँ के लोग नेकुकार हों। अगर आपका परवरदिगार चाहता तो सब लोगों को एक ही राह पर एक गिरोह कर देता। वो तो बराबर इख्तलाफ करने वाले ही रहेंगे, सिवा इनके जिन पर आपका रब रहम फरमाए। इन्हें तो इसी लिए पैदा किया है। और आपके रब की बात पूरी हो गई कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सब से पुर कर दूंगा। रसूलों के सब अहवाल हम आपके सामने आपके दिल की तस्कीन के लिए बयान फरमा रहे हैं। आपके पास इस सूरत में भी हक पहुंच चुका जो नसीहत और वास है मोमिनों के लिए। ईमान न लाने वालों से कह दीजिए कि तुम अपने तौर पर अमल किए जाओ, हम भी अमल में मशगूल हैं, और तुम भी इंतज़ार करो, हम भी मुंतजर हैं। ज़मीन और आसमानों का इल्म गैब तो अल्लाह ही को है, तमाम मामलात का रजू भी उसी की जानिब है। बस तुझे इसकी इबादत करनी चाहिए और इसी पे भरोसा रखना चाहिए, और तुम जो कुछ करते हो इससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं है। तो क्या पता चला सूरत पूरी होती है? हमने क्या सीखा? तमाम अंबिया का एक ही पैगाम, औबुदु रब्बकुम, एक रब की इबादत करो, उसको मानो। फिर सिराते मुस्तकीम पे साबित कदम रहने की बात थी, और बंदगी की हद से नहीं गुजरना और जालिम नहीं बनना। आपके मेरे लिए रज़ाए इलाही के नुक्ते साबित कदम रहना है, तौबा करनी है, हद से नहीं बढ़ना, अल्लाह की नेमतों को याद रखना है, नमाज कायम करनी है, और जुल्म करने वालों की तरफ नहीं झुकना। इसी तरह से सब्र करना है, नेकी करनी है, ज़मीन में फसाद को रोकना है, अल्लाह ताला पे भरोसा करना है, अल्लाह ताला की इबादत करना है और इस्लाह करनी है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। तो एक खूबसूरत सी सूरत पूरी हुई।